أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ومثاب للمهتدين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا من
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفضاء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته وعلى رعيتهم ومحديهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم آمين. آپ حاضرین کی مرحومین شہداء اسلام، شہداء مکہ کے شہیدوں، اس علاقے کے شہداء، سب کی بلندی درجات کے لیے بارک اللہ
فیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے. اور اس عبادت اور اطاعت کے مصادیق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہم پہنچے تھے شکر کے مقام پر. شکر ایک ایسی آسان ترین عبادت جس سے اکثر ہم غافل ہوتے ہیں. ممکن آپ کہیں نہیں، ہم تو جب بھی کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان جب سمیٹے رہتے ہیں، کھانا تمام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر اللہ الحمد للہ. نماز جب ختم کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، شکر اللہ شکر اللہ. لیکن اگر ہم توجہ کریں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. یہ جو ہمارا شکر کرنا ہے، یہ صلوات پڑھنے سے
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد،
یہ ایک آٹو سیٹنگ کے تحت ہوتا ہے. آٹومیٹکلی جیسے ہی ہمارا کھانا ختم ہوتا ہے، ہم الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں. توجہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، خدا کے بارگاہ میں واقعاً قلباً متوجہ ہو کر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. سجدہ شکر بھی اسی طرح سے ہے. اگر میں اس کو مزید واضح کرنا چاہوں تو اکثر ہماری نماز بھی اس طرح سے ہوتی ہے. ایک آٹو سیٹنگ کے تحت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، آٹومیٹکلی خود بخود جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، فرادہ پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ چلتی رہتی ہے نماز. اور ایک وقت آتا ہے خود خود یہ ہمارا اندر چونکہ عادت ہو چکی ہوتی ہے سال ہر سال نماز پڑھتے ہوئے، ایک جب ہم تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ہماری نماز ختم ہو گئی. ہماری نماز ختم، یہ بھی واقعی ایک المیہ ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو نماز ذکر خدا اس چیزوں کے پابند ہیں. ایک آٹو سیٹنگ کے تحت हमारी चूंकि ऑटोमेटिकली सेटिंग हो चुकी होती है, नमाज उस सेटिंग में आ गई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद कहना, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, ये आपके सेटिंग के तहत होता है, इसलिए उस तवज्जो के साथ नहीं होता। जब तवज्जो के साथ नहीं होता, हुजूर कल्ब के साथ नहीं होता, तो फिर इसको लकलकाए ज़बानी कहा जाता है, इसका कोई खास फायदा नहीं होता। शहीद दस्तगैर रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में कहते हैं, जब उनके सामने खाना लाया जाता था, गुनान का जब लुकमा तोड़ते थे, बिस्मिल्लाह हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, और लुकमा तोड़ के सालन वाला जो भी लगा के मुंह की तरफ लाते थे, तो उनकी आंखों में आंसू होते, कहते थे खुदाया मैं इस रिज़्क का तेरा किस तरह से शुक्र अदा करूं, कितना तू मेरे ऊपर मेहरबान है, कितना तू मेरे ऊपर। ये भी एक तरीका, जब वो मोमिन बताता है, हम गए अल्लामा हसन दादा अमरी हाफिज़ाउल्लाह की रहमत में, हाफिज़ाउल्लाह की खिदमत में हम गए, तो चाय वाय लाई गई, फल लाया गया, सेब लाया गया, तो सेब उठाया उन्होंने, उसको सूंघा और उसको चूमा, चूम के कहते हैं ये मेरे खालिक का शाहकार है, ये मेरे खालिक की मखलूक है, मेरे लिए खल्क किया है और उसका शाहकार है, उसके अफ़आल का, उसके फेल का एक फेल है, मसीह जैसे होता है ना, कोई मुसव्विर होता है, वो अपने मुख्तलिफ उसके शाहकार होते हैं, जो मुख्तलिफ तस्वीरें बनाता है वो उसके शाहकार होते हैं, इसको कहते हैं मेरे खालिक का शाहकार है, उसको चूमा, उसको सूंघा और उसके बाद फिर उसको काट के मेहमानों को भी खिलाया। ये है जो खुदा की नेमतों का शुक्र करता है हकीकतन, इसको कहते हैं आब्द शाकिर। हमारे जो ये शुक्र जो अभी मैंने आज किए, ये सब हमारी उस ऑटो सेटिंग के तहत होती है, हमारी नमाज इसी तरह से है, अमूमन अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आप सब की नमाज ऐसी ना हो, लेकिन जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो यही सूरत हाल नजर आती है। मैंने पहले भी शायद आपकी खिदमत में किसी मौके पर आज किया, तो शायद माए मुबारक हमारे कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद थे नजफ में, शहीद सैयद असदुल्लाह मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत थे नजफ में। अभी भी आप मेरे ख्याल में जब वादी सलाम की तरफ जाते हैं तो बाएं हाथ पे मस्जिद अमीरुल मोमिनीन आती है, उस मस्जिद के इमाम जमात थे, वहाँ वो तकरीर वगैरह भी किया करते थे। नकल कहते हैं कि शब कद्र की रात थी, शब कद्र की रात थी और वो तशरीफ लाए तकरीर के लिए, तो तौबा और इस्तिगफार के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की जाती है, उन्होंने भी तौबा और इस्तिगफार के बारे में गुफ्तगू करते हुए बीच में फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ मोमिनी, ऐ मोमिनात, ऐ मेरी माओ बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गो, तुम आए हो अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए, तुम आए हो अपने गलतियों के ऊपर तौबा करने के लिए, और मैं आज खुदा की बारगाह में आया हूँ अपनी इबादतों पर माफी मांगने, अपनी नमाजों की तौबा करने के लिए आया हूँ, अपने रोजों की तौबा करने के लिए आया हूँ, मैं जैसी नमाज पढ़ता हूँ मैं जैसा रोजा रखता हूँ मैं रोजा, लेकिन जिस तवज्जो के साथ, जिस खुशू के साथ होना चाहिए उस तरह नहीं होता, जिस इबादत का वो लायक है वैसी इबादत नहीं होती। ये हमारी इबादत एक किस्म का हमारी तरफ से तोहफा होती है, गिफ्ट होती है खुदा की बारगाह में, और जब इंसान देखे उसका गिफ्ट, उसका तोहफा जिस हस्ती को वो दे रहा है उसकी शान के मुताबिक नहीं है, वो शर्मिंदा होता है, उसके लिए वो क्या करता है, माजरत करता है, मेरी औकात इतनी थी, तो कहते हैं कि मैं खुदावंदार की बारगाह में गुनाहों की माफी मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपनी इबादतों की, अपनी नमाजों की, जिन नमाजों पे बाज़ जैसे अकड़ते हैं, कहते हैं हमारी कभी कोई नमाज कजा नहीं हुई, हम नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, हम पहली सब में खड़े होकर पढ़ते हैं, बड़े इसके ऊपर फख्र करते हैं, वो जिसके ऊपर मैं और मुझ जैसे फख्र करते हैं वो उसको अपनी खुदा की बारगाह में उसको भी अपने लिए कम समझते हैं, उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, माजरत कहते हैं। और ये क्या है, ये भी वही सुन्नत है सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। आफरीन है खुदा के ऐसे इबादत की तो उन्होंने की, फरिश्ते भी जैसी इबादत नहीं कर सकते वैसी इबादत की, और फिर उसके बाद कहते हैं मा अबदना का हक का इबादत है, मा अरफना का हक का मारफत है, जैसी मारफत उनको अता हुई कायनात में किसी को अता नहीं हुई, जैसी इबादत उन्होंने खुदा मुताल की कायनात में किसी ने नहीं की, इतनी इबादत करने के बावजूद भी कहते हैं कि मा अबदना का हक का इबादत है, ऐ पालने वाले जैसा तेरी इबादत का हक था वैसी इबादत हम नहीं कर सकते। ऐ पालने वाले, जैसा तेरी मार्फत का हक था वैसी मार्फत हम हासिल न कर सकते। ये अब्दशाकिर है, ये वाक्य हकीकी मानों में अब्दशाकिर है कि इतना कुछ खुदा की बारगाह में करके भी, हर इम्तिहान पास करके भी, हत्ता ऐसी इतनी इबादत करता है, इतनी इबादत करता है कि जाहिर खुदा ने किसी को ये बात नहीं कही। कायनात के रसूल को अपने हबीब को कहते हैं, जब देखा कि नबी रातों को उठ उठ के इतनी इबादत करते हैं कि पाँव में बर्फ पड़ गए, तो महबूद को कहना पड़ा, ऐ मेरे अब कुम, खड़े हो, रात को खड़े हुआ करो, रात को इबादत किया करो, लेकिन इल्ला कलीला, इतनी इबादत न करो कि तुम्हारे पाँव में बर्फ पड़ जाए। जब महबूद इस तरह से कह रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा इबादत करता है, इतनी ना किया कर, और अब क्या कह रहे हैं, माबदना का हक का इबादत, पालने वाले तेरी इबादत का हक मैं अदा नहीं कर सकता। यानी जिस तरह मेरा दिल चाहता था, जितना मेरा दिल चाहता था मुझे इश्क था इबादत से, उस तरह से मैं इबादत अंजाम नहीं दे सका। तो जो अपने आप को हर वक्त खुदा मुताल की बारगाह में फर्ज करता है, हर वक्त अपने आप को खुदा के हुजूर में दर्ज करता है, उसका शुक्र और होता है। और मुझ जैसे का शुक्र जो एक ऑटो सेटिंग के तहत है, एक ऑटोमेटिक वो शुक्र होता है, ये शुक्र और होता है। वो शुक्र कहां और ये शुक्र कहां। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आलम महजर खुदा तर महजर खुदा मासियत न कुनी। रिवायात से अक्सुदा जुमला, कायनात पूरी खुदा के हुजूर में है, खुदा की निगाहों के सामने है, खुदा की नजरों में है, और खुदा के देखते हुए खुदा की नाफरमानी। और ऐसे ऐसे बुजुर्गान हमने अपनी जिंदगी में देखे, जो वाकई हर वक्त अपने आप को खुदा के हुजूर में देखते थे, इनका शुक्र फिर और किस्म का शुक्र है। खुद इनके जो उस्ताद थे मरहूम शाह आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में एक दफा आयतुल्लाह मोहसिन सैयद मोहसिन खर्राजी हाफिज़ुल्लाह वो फरमा रहे थे कि मैं उनके घर गया और उनके घर वालों से मैंने पूछा कि मरहूम शाह आबादी मरहूम हो चुके थे सर, उनकी सबसे वाज़ह तरीन खसूसियत बारिश तरीन खसूसियत क्या थी। ये उनके घर वालों का बयान है। बाहर तो हम सब पसंद बड़े मुअद्दब बड़े उस तरह से होते हैं ना, लेकिन घर में तो घर होता है ना, तो उनके घर वालों का बयान है कि वो सबसे बारिश तरीन खसूसियत उनके लिए होती थी कि वो 24 घंटे अपने आप को खुदा की बारगाह में महसूस करते। 24 घंटे घर में भी अगर बैठे हैं तो उनके बैठने के अंदाज से पता चलता था कि खुदा उनको देख, गुफ्तगू करते थे तो गुफ्तगू के अंदाज से भी पता चलता था कि उनका खुदा उनको देख रहा है। यकीन जिस तरह मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, अपने घर में तो इस तरह ही होता, अपने घर में फ्री होता हूँ, अपनी मर्जी से बैठता हूँ, अपनी मर्जी से लेटता हूँ, अपनी मर्जी से उठता हूँ, जिस अंदाज से चाहूं बैठ सकता हूँ बैठता हूँ, लेकिन वो अपने घर में इस तरह से क्योंकि खुदा बाहर भी है, खुदा अंदर भी है, खुदा लोगों के सामने भी देख रहा होता है, खुदा जब मैं अकेला और तन्हा होता हूँ तो भी मुझे मैसेज चला है। मतलब उसकी यानी वो रिवायत किताब है कहीं नहीं पढ़ी नहीं नजर आई मुझे, लेकिन मैसेज बहुत खूबसूरत है हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम से। मोमिन यकीन आपने सुना होगा देखा होगा आया होगा आपके पास, मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई हो। दूसरों के सामने औरों के सामने इंसान बहरहाल एक मुअद्दब होता है, कुछ अखलाक होता है, बड़ा उसमें सारी तवाज़ो जो अच्छे लोग होते हैं पाई जाती है। तन्हाई में कैसा है, घर वालों के साथ कैसा है। हमारे एक उस्ताद उदास में फरमा रहे थे कि आलम दीन वो आलम दीन आदिल है जिसके पीछे उसकी बीवी नमाज पढ़े। सही आदिल वो है जिसकी बीवी उसके पीछे नमाज पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब इंसान के मतलब मियां बीवी एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के आदात एक दूसरे की खसूसियात हर चीज से कुछ जानते होते हैं घर के अंदर। तो आलिम आदिल वो है जिसकी बीवी उसके पीछे नमाज पढ़े। तो मोमिन वो नहीं कि जिसकी महफिल पाक, महफिल तो गुफ्तगू दूसरों के सामने तो बड़े बड़े बद अखलाक और बड़े बड़े बुरे लोग भी, वो भी बड़ी खुश अखलाकी और बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। कोई भी नहीं चाहता लोगों के सामने मेरी आबरू रेजी हो, लेकिन जो अकीदा तो हम सब का अकीदा है, क्योंकि ये अकीदा ना रखें तो फिर तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। मानते तो हम सब हैं कि खुदा हाजिर नाजिर है, तन्हाई में भी हमें देख रहा होता है और महफिलों में भी, हर जगह जहां पर भी हम चले जाएं उसकी निगाहों से कभी ओझल नहीं हो सकते। तो जो जिसके दिल दिमाग पर यकीदा नासिक हो और हर वक्त अपने आप को ऐसा महसूस करे उसका शुक्र और होता है, उसका शुक्र फिर आपको सेटिंग के तहत नहीं होता, वो एक किस्म का खुदा को देख रहा होता है। जैसे रिवायात में मिलता है नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम खुदा के सामने खुदा को देख रहे हो, अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा। सब आप समझ वाकई हम शुक्र में कोताही करते हैं। मैं जो आपकी खिदमत में ये सारी गुफ्तगू आज कर रहा हूँ इसलिए मैंने आज किया कि बहुत सारे जहन मुमकिन थे, हम तो शुक्र अदा करते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, हम तो सजदा शुक्र करते हैं, हम खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं शुक्र अदा करते हैं, तो पानी पीते हैं शुक्र अदा करते हैं, लेकिन तवज्जो के साथ शुक्र अदा करते हैं, खुशू खुजू के साथ शुक्र अदा करते हैं, अपने आप को वाकई खुदा की बारगाह में महसूस करते हुए कि वो हमें देख रहा है इस तरह से शुक्र अदा करते हैं। जो इस तरह से करता है वो वाकई शुक्र अदा करता है, और जो मेरी तरह उसकी आदत है रूटीन है ऑटोमेटिकली जैसे पानी पीता है उसके बाद कहता है सलाम या हुसैन, ऑटोमेटिक कहता है, खाना खाता है जब खाना दस्तरखान उठाने लगते हैं बर्तन उठाने लगते हैं ऑटोमेटिक खुद बहुत बेख्तियार क्योंकि उसकी आदत है उसके मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ता है जैसी ताकीबात वो खत्म होती है ऑटोमेटिक उसके साथ सजदे में चला जाता है और सजदा शुक्र करता है, तवज्जो नहीं होती है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कितनी अजीम नेमत खुदा ने मुझे दी थी, अपनी मुलाकात के लिए बुलाया था, मेरे साथ मुलाकात की थी, नमाज तहज्जुद की तौफीक हुई, सजदा शुक्र करता है, ये नहीं सोचता वन टू वन मुलाकात की है खुदा ने मुझे के साथ, मुझे तन्हाई में खुदा ने बुलाया था, नमाज जमात में मुलाकात के लिए बुलाया था, मोमिन के साथ बुलाया था। तवज्जो होती है, जिनकी तवज्जो होती है खुश बेहाल है और वो वाकई खुदा के शाकिर बंदे हैं, और खुदा भी इसलिए कहते हैं कलील मिन इबादी अश्शुकूर कि मेरे बंदों में मेरा शुक्र करने वाले बहुत सलावत करें साहब
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आज अभी तक जितनी बातें हुई वो सब इस पर थी कि हमें नेमत मिली और हम उस पर शुक्र अदा करें, हमें नेमत मिले और हम उस पर शुक्र अदा करें, अभी तक जितनी बातें हुई वो तकरीबन यही थी सवाए एक वाक्य के। कौन सा वाक्य जो दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया था, एक खातून का वाक्य जो जन्नत में हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की हमसाई थी, उसमें हमने देखा कि वो ऐसी नेमतों पर शुक्र अदा कर रही थी जिनको हम नक्स और ऐप समझते हैं। आज थोड़ी सी मैं सवाल से गुफ्तगू करना चाहूंगा फिर हमारी ये शुक्र की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी कि जो मैंने इसीलिए जो इब्तदा शुरू की आज के शुक्र वाकई हकीकतन खुदा का शुक्र कौन अदा करते हैं उनका जिक्र छेड़ा कि आज आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वाकई हकीकतन शाकिर कौन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहि व आलिहि सलाम को उन मुसाइब और मुश्किलात और परेशानियों में क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या वजह बनी। इमाम ने मुफस्सल वो दास्तान बयान की, इमाम फरमाते हैं हजरत अय्यूब बहुत ज्यादा खुदा मुताल का शुक्र बजा लाया करते थे और उनकी तरफ से मुसलसल बारगाह खुदावंदी में शुक्र फरिश्ते लेकर जाते थे, एक टीम जाती थी शुक्र लेकर वो भी पहुंचती नहीं थी पीछे वो फिर शुक्र अदा करते थे फिर एक और टीम शुक्र लेके, उस वक्त कहते हैं शैतान को भी बाद आसमानों तक जाने की इजाजत थी, उसने जब उसको कोई चक्कर लगा आसमानों पे तो उसने जब देखा मुसलसल कहते अय्यूब की तरफ से बारगाह खुदावंदी में शुक्र आ रहा है तो हसद हुआ उसे हसूदी की उसने और बारगाह खुदावंदी ने मैं कहा कि या अल्लाह ये जो तेरा शुक्र करता है ये सब इन नेमतों की वजह से है, ये दुनियावी माती जो नेमतें दी है माल मता और ये जायदाद वगैरह इसकी वजह से करता है, अगर ये इससे चली जाए तो फिर देखो मैं ये शुक्र करता है नहीं करता, ये ऐसे ही करता है, अगर तू मुझे इसकी औलाद और इसके माल पर तसल्लुत अता कर और मैं वो उससे छीन लूं तो फिर मैं देखूंगा ये तेरा कैसे शुक्र करता है। खुदा ने कहा जाओ तुम्हें मैं ये ताकत देता हूँ इसका माल और इसका इसकी औलाद इससे छीन लूं। शैतान ने जाके वो आग लगाई और उनकी औलाद भी जल गई, उनका माल भी जो था वो भी जल गया। ये काम करके आया हजरत अय्यूब की खिदमत में, मेहराब इबादत में खड़े थे, आगे हजरत अय्यूब की खिदमत में कहता है कि आपका माल आग लगी और आपका माल भी जल गया और आपकी सारी औलाद भी जल गई। हजरत अय्यूब ने क्या कहा, इन्नहा आरियतुन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताहा वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखज़ाहा, इन्नहा आरियतुन वो मेरा माल और मेरी औलाद खुदा की तरफ से मेरे पास अमानत थी, खुदा की चीज थी मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताहा, हम्द उस खुदा के लिए, शुक्र उस खुदा के लिए जिसने वो अमानत मुझे दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखज़ाहा और फिर उसी खुदा के लिए हम्द और सना और शुक्र जिसने वो अमानत मुझसे वापस ले ली। शैतान ने मुंह की खाई और फिर मजे की बात शैतान के ऊपर भी नुक्ता लगाया, कहा लौकान फीका खैरुन मा नजौता, अगर तेरे अंदर भी कोई बेहतरी और खैर होती तो तू भी उस आग में जल गया होता। इंसानी शक्ल में आया था ना, कहा अगर तेरे अंदर भी कोई खूबी खैर होती तू भी जल गया होता, वजह होता तेरा न जलना बताता है कि तेरे अंदर कोई खैर और खूबी नहीं। शैतान बड़ा तेज है, मैं आप हम जल्दी हिम्मत आ जाते हैं, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आती। पता है नबी है, मासूम है, फिर भी कोशिश करता है। बारगाह खुदावंदी में कहता है कि अगर इनकी इनके जो ज़रात है, जमीन थी, जायदाद थी बहुत बड़ी, उसमें फसल लगी हुई थी, इनकी ज़रात पे अगर तू मुझे मुसल्लत कर दे और मैं इनकी ज़रात तबाह कर दूं, फिर ये तेरा शुक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनकी ज़रात मौजूद है। खुदा ने ताला का जाओ तुम्हें ये भी इजाजत दी। उसने वहां पे भी अपने शयातीन को बुलाया और उन्होंने सारी ज़रात जो है वो तबाह कर दी, खराब कर दी। और आके हजरत अय्यूब की खिदमत फिर कहा कि आपकी ज़रात जितनी थी, फसलें जितनी थी, आपकी सारी जमीन तबाह हो गई, वो सारी जाया हो गई। हजरत अय्यूब की वही आवाज है, इन्नहा आरियत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताहा वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखज़ाहा, ये भी अल्लाह की मेरे पास अमानत थी और हम उस खुदा के लिए जिसने ये अमानत मुझे दी थी और हम उस खुदा के लिए जिसने ये अमानत मुझसे लौकान फीका खैरुन मा नजौता, अगर तेरे अंदर कोई खैर होती तो तू भी उसके साथ तबाह हो जाती। हिम्मत फिर भी नहीं आ रही शैतान में, शैतान फिर बारगाह खुदावंदी में कहता है इनके गोसवान बहुत ज्यादा हैं, भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा हैं, वो अगर तबाह हो जाए तो फिर ये तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा, अभी इस इतने नुकसान के बावजूद इसे भेड़ बकरियों से उम्मीद है। खुदा ने कहा जाओ उसको भी जो करना है करो। शैतान ने उन सबको भी हलाक कर दिया, भेड़ बकरियां रेवड़ जितना सब हलाक कर दिया। और फिर आया हजरत अय्यूब की खिदमत में वही जुमला, आपके सारे गोसवान भेड़ बकरियां सब तबाह हो गए, खत्म हो गए, मर गए, बीमारी बड़ी और सारे बाकी चल गए, खत्म हो गए। वही आवाज है, इन्नहा आरियत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताहा वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखज़ाहा, ये भी अल्लाह की मेरे पास अमानत थी, हम उस खुदा की जिसने इतना अरसा मुझे ये अमानत दिए रखी और मैं इस अमानत से इस्तेफादा करता रहा, फायदा उठाता रहा मुफ्त में, और फिर उसकी तारीफ और हम जो उसने आपको वापस ले, उसने उसकी चीज भी उसने वापस ले। शैतान ने कहा क्या, नहीं हम फिर भी नहीं आ रहा, खुदावंदी कहते हैं सिर्फ अपने हाथ पांव उतार के इस पे नाज है, यानी ये समझता है ये सारी चीजें मैं दोबारा हासिल कर लूंगा, अगर तू मुझे इसके बदन पर मुसल्लत कर दे फिर ये तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा। खुदा ने कहा जाओ ये भी लाजमा के दो। उसने ऐसा काम किया, ऐसी फूंक मारी, कहते हैं कि सिवाय आंखों के और अक्ल के, हजरत अय्यूब का सारा बदन यानी उसमें फोड़े निकल आए और जख्मी और गंद खराब हो गया, खून उसमें से ऐसे वो दाने निकले, सारा बदन खराब हो गया, माल मता औलाद हर चीज चली गई, सिर्फ एक बची बीवी जिनका नाम था हजरत रहीमा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी, एक बीवी और ये शौहर है कि जिसकी दो चीजें सलामत है, यानी बोलने में भी मुश्किल, सुनने में हर चीज उनकी वो करती, सिर्फ आंखें और अक्ल काम करती है बस। लोग उनके बदन से डर गए कि कोई ऐसी वबाई बीमारी ना हो, वो अपने शहर उस आबादी से भी बाहर निकाल दिया गया, बाहर खराबे में आके रहना शुरू कर दिया और कुछ भी नहीं कर सकते थे। बीवी बेचारी जाती थी लोगों के या घरों में काम करती थी या भीख मांगती थी, सदका खैरात इकट्ठी करती थी, कोई रोटी थालन जो कुछ लाती थी और दोनों मियां बीवी। और हजरत अय्यूब यही कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आताहा व अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अखज़ाहा, ये जितनी नेमतें थी हम उस खुदा की मुझे उसने अमानत के तौर पे दिए रखी और उसी खुदा की हम जिसने ये सारी चीजें मुझसे ले ली, सेहत सलामती भी मुझसे ले ली, मैं इस पर के खुदा का शाकिर हूं, खुदा का शुक्र। शैतान हिम्मत आ गया, कहते फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा हिम्मत बारगाह, यानी फिर खुदा की बारगाह में नहीं गया। फिर जो हजरत अय्यूब के खास ईमान लाने वाले मुरीद थे, इबादत करते थे पहाड़ों में, उस वक्त जो रहमानियत ये जायज समझी जाती थी, उनके पास चला गया, उनके कान भरे कि हजरत अय्यूब ने तो बहुत बड़ा कोई ऐसा गलत काम किया है नाउज़ बिल्लाह, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से इतना सख्त उनके ऊपर अजाब आया हुआ है, तो बहरहाल तुम उनके तालीमात और तुम उनके शागिर्द और उनकी तालीमात थी कि तुम इन मुकाम पर पहुंचे हो, आओ हजरत अय्यूब से कहो तुम क्या गुनाह किया है, उस गुनाह में उनसे पूछो और गुनाह की तुम सब मिलकर आप सब मिलकर दुआ करते हैं। देखिए दुश्मन किस तरह से अपना बन के, दुश्मन किस तरह से खैरखाह बन के धोखा दे रहा है कि आओ तुम भी आओ, मैं बड़ा दिल जलता है उनके लिए, तो आओ मिलके उनसे पूछते हैं जो गलती है उसकी, फिर हम सब मिलकर बारगाह खुदावंदी में हजरत अय्यूब के लिए तौबा इस्तिगफार करते हैं ताकि वो इस अजाब से निकल। उन नादान मानने वालों को लेकर शैतान आ गया हजरत अय्यूब की किस्मत में और फिर ये जुमला उन्होंने जमा के मासूम नबी को, कैसी मासूमियत थी उनकी और कैसा ईमान था उनका, मासूम नबी को आगे कहते हैं क्या अय्यूब आपसे जो भी गलती हुई है बहुत हो चुका, हमसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता, आपके अब अल्लाह से इतना अजाब आ रहा है, वो गलती हमें बता दें, हम तो आपके अपने हैं, आपके करीबी हैं, आपके शागिर्द हैं, हमें बता दें ताकि हम सब मिलकर खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं और खुदा हमारी दुआ सुनेगा और आपके ऊपर से मुसीबत और मुश्किल टल जाएंगे। कहते उस वक्त हजरत अय्यूब का वो जो सब्र था ना वो जवाब नहीं, पूछा भी गया बाद में जब उनसे कि जब ठीक हो गए कि इतनी आपके ऊपर ये मुसीबतें मुश्किल आई तो इनमें सबसे सख्त कौन सी थी, तो उन्होंने जवाब में यही बात बताई, ये अपनों का तो ये बहुत बड़ा दाखिल जबान था ना कि आपने जो गलती गुनाह की है वो गुनाह हमें बताएं ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह आपको शिफा दे, कहा ये मेरे लिए सबसे सख्त, औलाद चली गई मुझे इतना मसला नहीं हुआ, औलाद चली गई, दोस्तान चले गए, सब कुछ चला गया, मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई, बदन बिल्कुल अपाहज होकर मैं रह गया, मोहताज होकर रह गया, फिर भी मेरे लिए मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन जब ये अपनों ने आकर और मुखालिफ तो वैसे ही उनको ताने देते थे, जब ये ताने मुझे दिए गए, जख्म जवान मुझे लगाए गए, तो ये फिर मेरे लिए साफ हो गया। उस वक्त हजरत अय्यूब ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अल्लाह का नबी हूं, मासूम हूं, मैं कभी दस्तरखान पर नहीं बैठा मगर मेरे साथ यतीम और नादार बच्चे और नादार लोग जरूर होते थे, मैंने कभी यतीमों के बगैर खाना नहीं खाया, जब भी मेरे सामने दो इताअतें आती थी, अल्लाह की दो इताअतें आती थी, तो जब उन दो इताअतों में जो मुश्किल होती थी मैं उसका इंतखाब करता था, मुझसे बड़ा अल्लाह का इताअत गुजार हुए जमीन पर इस दौर में कौन है, और तू मुझे आगे कहते हो कि मैंने खुदा की बारगाह में जो गुनाह किया तुम्हें बताओ, सब जवाब दे गया, कहा या अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं होता। आवाज कुदरत आई कि जिस जगह बैठी हो बीवी जोरदार की गई हुई थी, जिस जगह बैठी हो इधर ही पांव जोर ठोकर मारो, वहां से पानी निकलेगा, उस पानी को पियो और उस पानी को साथ अपने बदन को भी धो, और जब ये काम किया पानी बाहर निकला और पिया भी और अपने बदन पे डाला, बदन भी ठीक हो गया, वो औलाद भी दोबारा जिंदा हो गया, आ गई जरात भी सारी ठीक, वो हर चीज दोबारा वापस मिल गई। ऐसा जज्बा ऐसा शुक्र कितने लोगों में पाया जाता है, ये बयान करने का मकसद ये है कि हम कोशिश करें ऐसा अब्द शाकिर बनने की कोशिश करें, होंगे यकीनन इस दौर में भी ऐसे आलिम मार्फत हैं, इस किस्म के शुक्रगुजार बंदे हैं हमारे यहाँ रस्म है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या सूरत हाल है, जब कोई फौत हो जाता है तो उसकी जब ताजियत और तस्लियत के लिए जाते हैं तो फातिहा वगैरह पढ़ के कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी, जुमला है अल्लाह की मर्जी, और जिनका वो फौत हुआ होता है जो साहिब अज़ा होते हैं वो कहते हैं शुक्र है। लेकिन ये भी आपको सेटिंग है, मैं उधर भी इसका जिक्र किया था वहां पे भी कि काश कि तहे कल्ब से हम ये बात कहें, बहर ये जरूर है जिस किसी ने ये रस्म राइट की थी वो आरफत वाले थे। ये कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ और अल्लाह की मर्जी, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है ये अल्लाह की तरफ से आई थी मुसीबत और अल्लाह का शुक्र। अब जो शाकिर वो है जो सिर्फ नियमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा न करे, जब अगर उसकी तरफ से कोई इम्तिहान की जरूरत मुसीबत आ जाए उस पर भी वो अल्लाह का शाकिर बनता है। हजरत लुकमान हकीम के बारे में कहते हैं जब वो गुलाम थे और उनका जो आका था बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इश्क करता था अपने गुलाम से, कहते हैं उसके पास जो भी चीज खाने की लाई जाती वो पहले हजरत लुकमान को खिलाता था और फिर खुद खाता था, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। एक दिन खरबूजा लाया गया उसके पास, कोई तोहफे के तौर पर लाया या कुछ खरीद के लाया, जैसे भी खरबूजा लाया गया उसको काटा, काट कहते हैं मेरे खाने उसको, हमारे जबान में कहते हैं फाड़ी है सकती, वो काट के उसके जो टुकड़े होते हैं ना एक टुकड़ा उसने खा के पहले अपनी उस रस्म और आदत के मुताबिक हजरत लुकमान को दिया। हजरत लुकमान ने खाया और थोड़ा ऐसा मुंह बनाया जैसे बहुत ज्यादा मीठा और बहुत पसंद आया और साथ ही कहते हैं और भी दे दिया, इसने और काट के दे दिया, खुश हो गया यानी चूंकि उसकी मोहब्बत थी हजरत लुकमान को खुश देखना चाहता था, एक और काट उनको दे दी, वो भी उन्होंने बड़े मजे ले लेके खाए, हमारी मां ने कहते चस्के ले लेके खाए और कहा तो और भी दो और भी दो और भी दो, खाते खाते आते में जब आखिरी काट बची तो उसने कहा पापा एक मुझे भी खाने दो, सारे खुद खा रहे हो, सारा मजा खुद खाना चाहते हो, ये मैं खुद खाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं ये भी मुझे दो बहुत मजा आ रहा है। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता सारा मैं तुम्हें खिला दू, कुछ मैं खुद भी तो खाऊ, इतना मजा इतना अगर लजीज है तो मुझे भी खाना। बहर उसने जैसे ही वो अपने दामन में दी फौरन उसको थूक दिया और कड़वा था और शदीद कड़वा था, थूक दिया और अपना गला साफ करने लगा और कुलियां करने लगा और हजरत लुकमान को कहते इतना कड़वा इतना तंग और तुम इस तरह खा रहे थे जैसे इतना मीठा है, ये क्या माज रहे है? उसने कहा तुम्हें, उन्होंने कहा तुम्हें पता चल गया है हकीकत यह है तुम हमेशा मुझे मेरा मेरी इज्जत करते हो, इत्राम करते हो, नेमतों से नवाजते हो, हमेशा अपनी तरफ से मेरे साथ अच्छा सलूक करते हो, मुझे इज्जत देते हो, तो आज तुम्हारे हाथ से अगर एक चीज तल्ख आ गई, तुमने जानबूझ के तो तल्ख नहीं की, तुम्हें तो नहीं पता था एक तल्ख चीज आ गई तो मैंने सोचा अगर मैं इसका इजहार करूंगा तुम्हारा दिल दुखेगा, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने खुशी का इजहार किया और चाह कि ये सारा मैं खा जाऊं ताकि तुम्हें वो जो एक जज्बा है मुझे हिदिया करने का और मुझे इज्जत देने का और मुझसे मोहब्बत करने का उसमें तुम्हें दुख ना हो कि मैंने इसको एक कड़वी चीज खिला दी। इतना बड़ा जहर है, खुदा की नेमतों में घर क्या है, खुदा की अताओं में घर क्या है, लेकिन आमतौर पर मुझ जैसे को वो नेमतें नजर नहीं आती है, मुझे ये नजर आता है कि फुलां के पास वो चीज है और मेरे पास मेरी माए बहने खास तौर पर इसे गौर से सुने, हमें ये चीज नजर आती है फुलां के घर में फुलां चीज है और हमारे घर में, आप यकीन करें इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाजू का जब ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं। एक तलाक का केस जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, औरत की तरफ से अदालत में केस हुआ कि मैं तलाक लेना चाहती हूं अपने शौहर से, जब पूछा गया उससे वजह क्या है, पता है उसने क्या वजह बताई, उसने वजह बताई कि मेरी, वो बीवी कहती है मेरी बहन का शौहर जो है वो गैर मुल्की सिगरेट पीता है और मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम भी वो सिगरेट पिया करो, ये कहते हैं मैं नहीं पीऊंगा, मेरी बहन का शौहर मेरा बहनोई गैर मुल्की सिगरेट पीता है, मैंने अपने शौहर को भी कहा तुम भी वही सिगरेट पियो ताकि मैं अपनी बहन के साथ मेरा स्टेटस अंदाजा ले लूं, ये भी हमें नजर आता अल्लाह ने हमें कितना दिया है और दुनिया की चीजें जो वाकई अहलुल्लाह है अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के बंदे हैं उन्हें पता है, यहां हम मुसाफिर हैं, आप ज़ियारात पे जाते हैं, हम ज़ियारात पे जाते हैं गुजारा करना होता है वहां पे, यही होता है ना रिहायश के एतबार से खाने पीने के एतबार से क्या करना होता है, हमने गुजारा करना होता है ना, हमारा मकसद वहां खाना पीना और अच्छी रिहायश और वो घूमना फिरना और सैर सपाटा तो नहीं होता, असली मकसद ये होता है हरम सुकून के साथ जाए, सुकून के साथ ज्यारत करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम हरम दे सके, यही मकसद होता है ना, बाकी तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं गुजारा करना है, मुनासिब जितना मुनासिब हो जाए अच्छा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है,
लेकिन गुजारा करना है, 10 दिन 20 दिन के बाद वापस चले जाना हमने, हमने कौन सा सारी जिंदगी इधर रहना है। नहीं, यही चीज इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में हमने गुजारा करना है। ये एक पुल है, इस पुल से गुजर के हमने उस दूसरी दुनिया जाना है। तो यहाँ पे जो मिल जाए, जिस तरह मिल जाए, आदमी कोशिश करे, ट्राई करे, उसके ऊपर गुजारा करना है। बाकी असली मकसद जिस हदफ के लिए खाल किए गए हैं, मसलन ज़ियारात पे आप जाते हैं तो हरम में जाने के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं, असली मकसद वो होता है, वो हासिल हो जाए, बाकी जो गम दुख तकलीफ आए आदमी कहते परवाह नहीं है, ज़ियारत हमारी सुकून के साथ हो रही है, हमारा मकसद हमें मिल रहा है। यहाँ पे भी यही होना चाहिए, इस दुनिया में भी हम एक मकसद और हदफ लेके आए। बाकी ये जितनी चीजें हैं, ये जरूरियात बदन है, ये जरूरियात बदन जितनी मुनासिब मिले उतना अच्छा है। दुनिया की नेमतें असल में मोमिन के लिए खाली है, जितनी मुनासिब मिले उतना अच्छा है, लेकिन गुजारा करना है। असल हमने क्या आखरत को मद्देनजर रखना है, अल्लाह की बंदगी को, अल्लाह की इताअत को, अल्लाह की मखलूक को, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास को हमने उसका ख्याल रखना है, उस मकसद के लिए हम आए। अगर वो मकसद हमें हासिल हो रहा है, उसके साथ गुजारा हो रहा है, तो इन चीजों पे हमें उस मकसद की तरफ मुतवज्जे रहते हुए उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। खुदा हमें तौफीक दे रहा है इताअत की, बंदगी की, दीन की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, अहल-ओ-आयाल को रिज़्क़ के हलाल कमा के ला के खिलाने की तौफीक दे रहा है। ये हमारा मकसद है, ये हमें हासिल हो रहा है। सलावत करें सब। और जब इतने इम्तिहान हुए और हर इम्तिहान में हजरत अय्यूब यही कहते हुए नजर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आताहा व अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अखज़हा, तो फिर आवाज कुदरत आई कुरान की सूरत में कि इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द। हमारा मकसद भी उबूदियत और बंदगी मौजूद ही और साथ शुक्र। तो खुदा फरमाते इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द, हमने उसे बेहतरीन बंदा अपना माना। क्यों? क्योंकि वो मुसीबतों पर भी खुदा का शुक्र बजा लाता है। बेहतरीन बंदा क्यों? उसे हमने पाया, नेमतों पर तो सब शुक्र बजा लाते हैं। इमाम की खिदमत पर आगे आया और कहा कि शायद इमाम से पूछा या इमाम ने उससे पूछा, मुझे याद नहीं। बहरहाल खुलासा यह कि उसने इमाम ने पूछा उससे कि कैसी गुजर रही है। कहा अल्लाह देता है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, नहीं देता तो सब्र करते हैं। अब चूंकि ये इमाम ने तशबीह दी है इसलिए मैं कहा, इमाम कहते हैं, इमाम फरमाते हैं कुत्ते भी यही काम करते हैं, कुत्ता भी यही काम करते हैं। मालिक उसे रोटी और खाने को दे दे तो उसके लिए दो मिलाता है, ना दे तो उसी के दरवाजे पे बैठा रहता है। कहा फिर मौला आप क्या करते हैं? कहा हमें अल्लाह दे तो भी शुक्र करते हैं, ना दे तो भी शुक्र। हज़रत इब्राहिम कायनात फरिश्तों के सरदार जब खुदा की तरफ से ये पैगाम लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि आपकी शुक्रगुजारी की वजह से, आपकी इबादत और इताअत की वजह से और आपसे मोहब्बत की वजह से खुदावंदार कायनात के तमाम खजानों की चाबियां आपको देना चाहता है और आपके मुकाम में जरा बराबर भी कमी नहीं होगी, आपके दर्जात में जरा बराबर भी कमी नहीं होगी और कायनात के सब खजानों की हर चीज आपको देना चाहते हैं। कहा अगर हुक्म है बिस्मिल्लाह, अगर मुझे इख्तियार है तो फिर मुझे ये चाबियां ये कुंजियां नहीं चाहिए। क्यों? कहा मैं चाहता हूं एक दिन मेरे पास हो मैं उसका शुक्र बजा रहा हूं, एक दिन मेरे पास ना हो ताकि मैं उसके सामने हाथ फैलाऊं, उसके सामने दामन फैलाऊं, उसकी बारगाह में 10 हाथ दुआ के लिए बुलंद करूं। अगर हमेशा मेरे पास होगा तो फिर मैं क्या चीज मांगूंगा? हर चीज जो मैं चाहता हूं मुझे अगर अता कर दी जाए तो फिर मैं उससे क्या मांगूंगा? इसलिए मैं चाहता हूं मुझे कायनात के सारे खजाने ना मिले, कुछ हो कुछ ना हो, जब होगा तो शुक्र बजा लाऊंगा, जब नहीं होगा तो उसकी बारगाह में 10 दिन न्याज बुलंद करूंगा। इलाही उबैदु का बिफिनाए, मिस्कीनों का बिफिनाए, फकीरों का बिफिनाए,
سائلک بجنابک یسألک مولا یقدر علی ملک. جو لوگ جو احباب حج پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, جنہوں نے جو نہیں گیا انہوں نے بھی دیکھا ہوگا تصویروں وغیرہ میں, حجر اسماعیل ایک نصف دائرے کی طرح ڈی, جو جیومیٹری کی ڈی ہوتی ہے نا, ڈی کی طرح خانہ کعبہ کے ساتھ ایک دیوار ہے جسے حجر اسماعیل کہتے ہیں. اس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہما کی قبریں ہیں, اور ادھر ہی خانہ کعبہ کے چھت کا وہ میزاب نابدون یا پرنالا وہ بھی وہیں پہ سونے کا پرنالا, میزاب رحمت جسے کہتے ہیں, نابدون تلا رحمت کا پرنالا, مقدس ترین جگہ ہے. کہتے ہیں جب امام مشرف ہوا کرتے تھے ہمارے میرے اور آپ کے چوتھے امام خانہ خدا میں, تو حضرت اسماعیل نے وہاں جب بیٹھتے تھے تو راتوں کو بعض اوقات ساری ساری رات سجدے میں یہی دعا پڑھتے تھے, الہی عبیدک بفنائک مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک یسألک ما لا یقدر علیہ غیرک, الہی اے میرے معبود عبیدک بفنائک. ایک ہوتا ہے عبدوں کا, ایک ہوتا ہے عبیدوں کا. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ, عبید کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا بندہ, جیسے ہم کہتے ہیں وہ اس میں مسافر مقبر اردو میں پڑھا ہوگا ہمارے ان جوان اور جوان بھائیوں نے کہ دیکھ سے دیکچی, پہاڑ سے پہاڑی, اسی طرح عبد سے عبید. عربی میں عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور عبید کا مطلب ہوتا ہے ادنا سا بندہ. کائنات کا امام ہے, واسطہ فیض ہے خالق اور مخلوق کے درمیان, اور جب خالق کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے, اپنے آپ کو عبد بھی نہیں کہتا, عبیدوں کا بے فنائے, تیرا ادنا سا, تیرا چھوٹا سا بندہ, بے فنائے, فنائے یعنی دروازہ, تیرے دروازے پہ آیا ہے. الہی فقیروں کا بے فنائے, تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے. مسکینوں کا بے فنائے, تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آیا. مسکین نادار, جس کے پاس خرچہ نہ ہو, سال بھر کا خرچہ نہ ہو, مسکین تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آیا. جو راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے اناج بانٹتا ہے, جو دنیا کو کھلاتا ہے, جب خود بارگاہ خداوندی میں آتا ہے تو کہتا ہے مسکینوں کا بے فنائے, سائلوں کا بے فنائے, تیرا منگتا, تیرا گدا تیرے دروازے پہ آیا. یسألک ما لا یقدر علیہ غیرک, تجھ سے سوال کرتا ہے اس چیز کا جو تیرے سوا کوئی اور عطا. یہ کیسے بندے تھے خدا کے, سب کچھ ہے, دنیا کو نوازتے ہیں, لیکن جب خود بارگاہ خداوندی میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو دنیا کا مسکین ترین, غریب ترین, نادان ترین, فقیر ترین اور سب سے چھوٹا بندہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں. کیسے بارگاہ خداوندی میں کس طرح سے اظہار تذلل کرتے ہیں, اظہار ذلت کرتے ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہے کس کی بارگاہ میں آئے, انہیں پتہ ہے اس نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو واقعا ہدف خلقت کو پا لیتے ہیں, جتنی نعمتیں انہیں عطا ہوتی جاتی ہیں ان کا ساتھ اتنا ہی زیادہ چھپتا چلا جاتا ہے. اعلیٰ ذات انسان اسی طرح ہوتا ہے, جب کوئی اس پہ احسان کرتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے, اور جتنے زیادہ وہ اس کے اوپر احسان کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا غلام بنتا چلا جاتا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام پر خدا نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ احسانات کیے, اور اسی لیے جتنا اظہار ذلت اور اظہار غلامی اور بندگی اہل بیت علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کرتے تھے, کرتے ہیں اور کر سکے, اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. اعلیٰ ذات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا وہ خدا کی عطاؤں کو دیکھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خدا کی بارگاہ میں اس کا سر جھکتا چلا جاتا ہے, اور پھر اگر وہ خدا اسے بلائے, وہ خدا اسے کسی چیز کا حکم دے, ممکن ہے میں کسی سوچ و بچار میں پڑ جاؤں, لیکن وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے, جتنے جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ کسی کو اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا, آج کاش وہ مجھے کچھ کہے, کاش وہ مجھے کچھ کہے تاکہ میں اس کا امر بجاؤں. وہ منتظر ہوتا ہے, اور عاشقانہ وار منتظر ہوتا ہے, اور یہ چیز ہم نے دیکھی کربلا میں. यही चीज हमने देखी कर्बला के मैदान में, मुसीबत भी बहुत सख्त थी, मुसीबत भी बहुत बड़ी थी, लेकिन ये भी रिवायात में मिलता है दूर दूर शहादतें ज्यादा होती जाती थी, इमाम का चेहरा शोक से सुर्ख होता जाता था, एक अजीब सा हाल और एक अजीब सा वज्द इमाम के चेहरे से महसूस होता, रोते भी थे, गम का इजहार भी करते थे, लेकिन एक एहसास सुरूर भी था साथ कि जो जो आजमाइशें मैं कामयाब होता जा रहा हूं, बारगाह खुदाबंदी में सुरखुरू होता जा रहा हूं, इत्मीनान बढ़ता चला जाता था कि मैं कुछ ना कुछ खुदा के लिए कर रहा हूं, कुछ ना कुछ खुदा के लिए कुर्बान कर रहा हूं। गम और दुख अपनी जगह, अजीजों की जुदाई मुसायब वो अपनी जगह, लेकिन इधर से ये एहसास ये इत्मीनान खुदा के अम्र की इताअत कर रहा है। जब हजरत अली असगर का खून अपने हाथों में लिया और बाद रवायतों में अपनी दाढ़ी पे मतलब बाद रवायतों में आसमान की तरफ फेंका, तो साथ यही जुमला कहा था कि ये मुसीबत बहुत बड़ी है, ये मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन ऐ खुदा तेरी निगाहों के सामने है, ये तेरी निगाहों के सामने होना इसे मेरे लिए आसान होना, यानी मुश्किल भी है आसान भी। मक्का से चले 8 ज़िलहज को, रास्ते में उज़ैमिया दैर मंजिल पे जब पहुंचे तो एक और काफिला भी जा रहा था, छोटा सा काफिला था, कूफे का एक छोटा सा सरदार ज़ुहैर इब्ने क़ैल, वो थोड़ा जंगजू दिलेर आदमी था, लेकिन अहले बैत के मुखालिफ गिरोह से उसका ताल्लुक था। उस दौर में दो गिरोह समझे जाते थे, एक शियायान अली थे और एक उस्मानी कहे जाते थे, एक अलवी कहलवाते थे कहे जाते थे और एक उस्मानी, उसका उस्मानी उस मकतब और उससे ताल्लुक था, लेकिन उसके अंदर कोई चीज थी, उसके अंदर कुछ था, कोई ऐसी चीज थी उसके अंदर, हुज़ैमिया की ज़ाहिर मंज़िल थी, वो पड़ाव डाले बैठा था और वो भी हज करके आया था, लेकिन तेज तेजी से आ रहा था, जल्दी आ रहा था, इमाम चूंकि जगह जगह रुकते थे, रास्ते करते थे, थोड़ा टाइम लग रहा था, वो काफिला बराबर हो गया। उसने जब देखा, वो कोशिश करता था इमाम के काफिले से दूर पड़ाव डाले ताकि आमना सामना ना होने पाए, लेकिन यहाँ पे जगह ऐसी थी कि वो पानी इस तरह से था कि उसको भी थोड़ा नजदीक खेमा खेमे लगाने पड़े। इमाम ने साथ से देखा, देखिए अल्लाह का जो नुमाइंदा होता है वो दुश्मनों के दरमियान में भी किसी में अगर काबिलियत हिदायत देखता है तो उसे छोड़ता नहीं है, ये नहीं कहता ये दुश्मन का आदमी है इसको छोड़ो, नहीं, उसे भी चुन लेता है, उसके लिए भी कोशिश करता है। कासिद भेजा, जब कासिद आया तो बुहैर अपने आलोयाल के साथ और अपने करीबियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे, लुकमा तोड़ के मुंह की तरफ ला रहे थे कि वो कासिद आ गया, अंदर आया और कहा कि मुझे अली के बेटे हुसैन ने भेजा है और वो आपको बुला रहे हैं। ये लुकमा इसके हाथ में था, इधर ही डूब गया, सोच में डूब गया। कल मैंने यहां पे औरतों का थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब हालात बदले तो कूफे की औरतें बीवियां अपने शौहरों के बाजू पकड़ पकड़ के खेत पे लेके जा रही थी, दरवाजे बंद कर रही थी, बहनें अपने भाइयों के और माएं अपने बेटों के, बाप भी इसी तरह से कि इनका साथ नहीं देना, खतरा है, लश्कर आ रहा है, तहस नहस हो जाएंगे, डरा रही थी, धमका रही थी। और यहां पे औरत का किरदार देखिए, सोच में डूब गया, कोई नहीं बोला। तारीख कहती है, मक्तर कहते हैं, ऐसा मंजर था जैसे उनकी सरों पर परिंदे बैठे हैं, ऐसे बिल्कुल साकित, क्या करें, ये तो सामना नहीं करना चाहते थे ना, ये उनसे मिलना नहीं चाहते थे, साकित, कोई नहीं बोला। जोजा बोली उसकी, दैलम उसका नाम बताया गया, आफरीन आफरीन ऐसी खवातीन, दैलम बोली क्या सोच, क्या जवाब क्यों नहीं देते, का सोच रहा हूं हां करूं या ना करूं, सोच रहा हूं कि हां करूं या ना करूं। सोचा कहती है, आफरीन, हमारे लाखों सलाम ऐसी सोचाओं को, ऐसी खवातीन को। वो कहती, शर्म नहीं आती तू, रसूल का बेटा बुला रहा है, तुम कह रहे मैं सोच रहा हूं कि हां करूं या ना करूं, इसमें सोचने की कौन सी बात है, शर्म करो, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं जाती हूं। बीवी ने शर्म दिलाई, उधर बीवियां शोरों को खेच खेच के लेके जा रही थी, इधर बीवी भेज रही है, उठ के चला गया। तारीख ने कुछ नहीं लिखा, इतना लिखा इमाम की और जुहैर की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बात हुई कोई पता नहीं, वो क्या नजर करम थी, वो क्या फूंक थी, वो क्या दम था, वो क्या लुत्फ था इमाम का कि जुहैर जो गया था तो उस्मानी था और जब इमाम से मुलाकात करके खेमे से निकला तो वो 180 दर्जे बदल चुका था। ना जाने इमाम ने उसके साथ क्या बात की, क्या गुफ्तगू हुई, मगर तारीख खामोश है इस सिलसिले में। बस ये पता है जो गया था वो निकला नहीं, गया था दुश्मन और जब निकला तो जान साहब वापिस आके उसने ऐलान कर दिया अपने दोस्तों से कि मेरी और तुम्हारी राहें जुदा, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो करबला वालों के साथ चला। और फिर इसी मंजिल पर कहते हैं दो शख्स और भी हैं, एक का नाम अब्दुल्ला और दूसरे का नाम अभी मेरे जहन में नहीं है। दो शख्स ये हज करके, ये भी इमाम के साथियों में से थे, इन्होंने हज पूरा किया और तेज तेज आ रहे थे ताकि हम इमाम के काफिले के साथ मिल जाए और इसी मंजिल पे जा रहे हैं, वो भी आके इमाम के साथ मिले। वो कहते हैं, अभी एक 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 नमूना मैंने आपके खिदमत पेश किया, वो कहते हैं कि हम वहां पे थे इसी मंजिल पर, कूफे की तरफ से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया ऊंटनी पर सवार, ऊंटनी पर सवार कूफे की तरफ से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। ये मैं तारीख की बातें बता रहा हूं ताकि मेरे जवान नौजवान भाइयों को पता चले कि लोग किस किस्म के होते हैं, फैसला करना कितना मुश्किल काम होता है। ये एक जोहर का फैसला है और इधर इस शख्स को देखिए, नाका पे सवार आ रहा है, जहरा कलाम खुद आगे बढ़ा, मक्तल अजीब है, किसी और को नहीं भेजा, इमाम खुद आगे बढ़े उसकी तरफ। उसने जब देखा रसूल का बेटा आ रहा है, उसने रास्ता बदल दिया, उसने रास्ता बदल दिया। ये दोनों शख्स जो कूफे के थे, ये कहते हम समझ गए इमाम उससे कूफे के हालात पूछना चाहते थे, और उसने जब इमाम को देखा अपना रास्ता बदल दिया कि मेरा इमाम के साथ सामने ही ना हो, बात ही ना करूं, कितना मजलूम है आपका इमाम। ये दोनों कहते हैं कि हम अपने इमाम के दिल की बात समझ गए, हमने कहा हम जाते हैं इसके पास, हमने अपनी सवारी, हम सवार हुए अपनी सवारी पे तेज तेज उसके पीछे गए और कुछ फासले पे जाके हमने हम उस तक पहुंच गए। हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम नसब, उसने कहा मेरा था जो नाम नसब बताया था हम उसे जानते थे, वो भी बनी असद का था, ये दोनों भी बनी असद से थे, इन्होंने भी कहा हम भी बनी असद के, हम फुलां ताइफे से, तुम फुलां ताइफे से, वो बातचीत हुई। पूछा हाँ आप ये बताओ कूफे के हालात कैसे, कूफे के हालात कैसे। उसने कहा कूफे के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, हाली को भी शहीद कर दिया गया और मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया, और सिर्फ शहीद नहीं किया गया बल्कि उन दोनों के पैरों में रस्सियां डालकर कूफे वालों पर रोब और दहशत बिठाने के लिए कूफे की गलियों कितना पस्त है इमाम के मुकाबले में आने वाला दुश्मन, जो मुर्दों में ये जनाजे के ऊपर भी रहम नहीं करता, कूफे की गलियों में उनको घसीटा जा रहा है। इनके दिल गम से भर गए क्योंकि अभी तक बाकायदा तौर पर इमाम और इमाम के साथियों को मुस्लिम की खबर नहीं थी। ये कहते हैं हमारे दिल गम से भर गए, हम उससे मिलके वापस इमाम के काफिले में पहुंचे, जब इमाम की खिदमत में पहुंचे तो इमाम अपने असहाब और दोस्तों आलोया के साथ अपने जवानों के साथ बैठे थे। हमने इमाम की खिदमत में सलाम किया और हमने कहा कि मौला एक खबर आपको देना चाहते हैं, आया इन सब के सामने दें या तन्हाई में आपको बताएं। शायद वो सोच रहे थे ये खबर सुनकर इमाम के साथियों के होश में पास ना हो जाए, ये जो थोड़े बहुत यार अंसार हैं कहीं ये भी इमाम को छोड़ के ना चले जाए। इमाम ने अपने साथियों पर, अपने बावफा अस्हाब पर, अपने खानदान वालों के चेहरों पर एक नजर डाली और कहा कि इनसे मैं कोई चीज नहीं छुपाता, जो कहना है सबके सामने कहो। अब उन्होंने वो बात कहना शुरू की कि मौला वो शख्स जो नाका पर आ रहा था, आप उससे कुछ पूछना चाहते थे और आपको देख के उसने अपना रास्ता बदल दिया, हम उसके पास गए, हमने उसका नाम नसब पूछा, हम उसे पहचानते हैं, वो एक सच्चा आदमी है, सच बोलने वाला आदमी है, उससे हमने कूफे के हालात पूछे और उसने हालात बताए। बस ये कहना था कि ज़हरा के दाद के मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुंह से ये कलिमात अदा हो रहे थे और आंखें बादल की तरह बरस रही थी। इमाम भी रो पड़े, इमाम के यार व अंसार भी रो पड़े, ये कर्बला वालों के पहले शहीद की खबर और बड़ी ही सख्त खबर थी। सफर का आलम था, मालूम नहीं था कूफे में क्या होगा और क्या नहीं होगा। खतूत के सामने रखते हुए ये समझ रहे होंगे कि कूफा जाएंगे और मक्का और मदीना जैसे हालात नहीं होंगे, हमारा इस्तकबाल किया जाएगा, हमें बड़े एहतराम के साथ लोग हमारा साथ देंगे और हम जालिम का मुकाबला करेंगे। लेकिन जब ये खबर सुनी हर आंख अश्कबार हो गई, औलाद कदम अरूज पर पहुंच गया। इमाम ने अपने साहब से पूछा, बताओ आप क्या कहते हो इस बारे में? सब ने कहा कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कूफे के हालात बदल गए तो बदल गए, कूफे वाले साथ छोड़ गए तो छोड़ गए, लेकिन हम आपका साथ छोड़ने के लिए आपके साथ नहीं आए हैं, हम आपके साथ जाएंगे, जहां आप जाएंगे हम आपके साथ हैं। उसके बाद मक्तल कहता है, इमाम तशरीफ लाए अपने अहले हरम के पास और आवाज दे के कहते हैं, मुस्लिम की एक 7 साल बेटी थी जिनका नाम था आतिका, आवाज दे के कहते हैं आतिका को बुलाओ। आतिका को बुलाया गया, इमाम ने उसके सर पर हाथ फेरा, इमाम ने अपनी गांजी के बोसे लिए। इमाम का ये शफकत का अंदाज देखकर इस आतिका के बारे में कहते हैं वो अक्सर पूछा करती थी, बेटियों वाले भी यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, ये बच्ची बहुत ज्यादा पूछा करती थी, मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा किस हाल में है, मेरे बाबा कब आएंगे। लेकिन जब मामू को इस तरह से मोहब्बत करते हुए देखा, वो बीवी कहती है, वो मासूमा कहती है, मामू जान क्या मेरे बाबा की कोई खबर आई है? मामू जान क्या मेरे बाबा के बारे में कोई इत्तला आई है? आप तो इस तरह से मुझसे मोहब्बत फरमा रहे हैं, इस तरह से मेरे सर पर दस्त शफकत फेर रहे हैं, जिस तरह से यतीमों कि जिसका बाबा मारा जाए, जिसका बाबा फौत हो जाए, दूसरे आते हैं, अजीज़ो अकारिम आते हैं, लोग आते हैं, उस बच्ची के साथ शफकत से पेश आते हैं, उस बच्ची से मोहब्बत करते हैं, दस्त शफकत सर पर फेरते हैं और दिलासे देते हैं, कहते हैं घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा बाबा मारा गया तो क्या हुआ, मैं मौजूद हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ये बातें सकीना के जहन में बैठ गई। और अजीजों, जब असर आशूर आई, असर काम आया, हुसैन आखिरी विदा करके चले गए, काफी देर के बाद जब खैमे के बाहर घोड़े के टांगों की आवाज आई, बंदर कहता है खैमे का पर्दा उठा, हुसैन की नन्ही सकीना नजर आई, अब जो सुलझना समझ गई, आवाज दे के कहती है, या जवान आबी हद सो किया भी हमको दिला दिशाना, तेरे बाबा के घोड़े मैं अपने मामू मुस्लिम की बेटी आतिका की तरह समझ गई, मेरा बाबा मारा गया लेकिन इतना पूछती हूँ, क्या दुआ करने से पहले तेरे बाबा को पानी की दाल उन्होंने पिलाया जो मेरे असगर की तरह
परेशानियों को दूर
پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ارضی و سماوی آفات و بلیات سے حفاظت فرما، بے روزگاروں کو روزگار وافر عطا فرما، جن کو رزق دیا ہے برکت عطا فرما، رزق کے حلال وافر برکت ہم سب کو عطا فرما، بے اولاد و اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تک قیام قیامت اہل بیت علیہم السلام کا عہدیدار پیروکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیز کو نابود فرما، مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء دنیا میں جان گئی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص حاضر مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی آبادی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما،